हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। त्रिशा ने उसकी ओर देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, जैसा तुम चाहो वेदांश, लेकिन एक बात याद रखना, कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और अगर तुम भी कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं हो तो बहुत कुछ खो दोगे। वेदांश ने उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए दरवाज़ा खोल दिया और कहा, तुम अब जा सकती हो, मुझे और कोई बात नहीं करनी है। त्रिशा ने एक बार फिर उसकी ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, अच्छा एक बात बताओ, ऐसा क्या है उस लड़की में? वो दिखने में भी इतनी खास नहीं है। कैसी साड़ी पहनी हुई थी उसने? बिल्कुल भी सेक्सी हॉट नहीं है मेरी तरह। एक बार तुम मेरी तरफ देखो तो सही, और भूल जाओ एक पल के लिए कि तुम्हारी शादी किसी लड़की से हो चुकी है। बस एक मौका, यकीन करो तुम्हें एक पल के लिए भी उसकी याद नहीं आएगी। मैं आने ही नहीं दूंगी। त्रिशा स्टडी रूम में त्रिशा के साथ था। उसकी बातें, उसका रवैया और उसके इरादे अब उसे पूरी तरह से समझ में आ चुके थे। त्रिशा के हर शब्द से वेदांश को ये एहसास हो रहा था कि वो इस मुलाकात को सिर्फ एक प्रोफेशनल बातचीत के रूप में नहीं देख रही थी। लेकिन वेदांश इस वक्त त्रिशा से कुछ कहने से बच रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बिजनेस डील पर कोई गलत असर पड़े। वो एक अजीब सी स्थिति में फंस गया था। त्रिशा उसके मन करने पर पूरी तरह से उसके खिलाफ जा सकती थी, और कंपनी के हालात को देखते हुए उसे फिलहाल किसी भी निवेशक की जरूरत थी। उसके दिमाग में बार बार अंबिका का ख्याल आ रहा था। पता नहीं क्यों वो अंबिका की जगह पर किसी और को सोच ही नहीं पा रहा था। वो इन सब बातों को सोच ही रहा था कि तभी त्रिशा ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और अपने हाथ उसके गले में डाल दिए। उसकी नज़दीकियाँ साफ बता रही थीं कि उसके इरादे क्या थे। वेदांश के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि त्रिशा इतनी हद तक जा सकती है। त्रिशा उसकी आंखों में देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोली, वेदांश तुम्हारी इस खामोशी का मतलब मैं साफ समझ रही हूँ, और तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है। मुझे पता है तुम बस ये सोच रहे हो कि किसी को पता चला तो तुम्हारा नाम खराब होगा, लेकिन मुझ पर यकीन करो, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। जो भी हमारे बीच कमरे की चारदीवारी में होगा वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, तुम्हारी बीवी को भी पता नहीं चलेगा। वेदांश ने अचानक अपने आप को बहुत ही ज्यादा असहज महसूस किया। त्रिशा अब उसके इतने करीब आ चुकी थी कि वो उसकी सांसों को महसूस कर सकता था। त्रिशा धीरे धीरे उसके चेहरे के करीब आने लगी, और वेदांश को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका दिमाग जैसे काम नहीं कर रहा था, और उसका शरीर जैसे जड़ हो गया था। वो किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश कर ही रहा था कि त्रिशा ने आगे आकर उसे चूमने की कोशिश की। वेदांश ने तुरंत अपना चेहरा पीछे खींचा और त्रिशा के हाथों को हल्के से पकड़कर खुद से दूर करने की कोशिश की। त्रिशा, ये क्या कर रही हो? मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, वेदांश ने गुस्से और घबराहट में कहा। लेकिन त्रिशा उसकी बात को नज़रअंदाज करती हुई और करीब आने लगी। तभी अचानक स्टडी रूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला और अंबिका वहाँ खड़ी थी। उसकी आंखों में अविश्वास और सदमे का मिला जुला भाव था। वो अपने पति को त्रिशा के इतने करीब देखकर दंग रह गई। जिस एंगल से वो देख रही थी उसे ऐसा लग रहा था कि वेदांश और त्रिशा एक दूसरे को किस कर रहे थे। उसके चेहरे पर एक दर्द भरी खामोशी थी और उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। अंबिका को ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया बिखर गई हो, लेकिन फिर भी वो बिना कुछ कहे चुपचाप दरवाजे पर खड़ी रही। लेकिन उसके चेहरे से साफ था कि वो ये मान चुकी थी कि वेदांश की मर्जी भी इसमें शामिल है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि वेदांश की मर्जी के बिना त्रिशा या कोई भी लड़की उसके इतने करीब जाकर उसे किस कर सकती होगी। त्रिशा के इरादे उसे भी पहले ही समझ आ चुके थे, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो वेदांश से वफा की उम्मीद कर रही थी। लेकिन अब वो उम्मीद भी बुरी तरह टूटकर बिखर गई थी। अंबिका की आंखों से आंसू गिरने लगे और वो रोते हुए वहां से भाग गई, ऊपर की ओर सीढ़ियों से अपने कमरे की तरफ। त्रिशा उसके और ज्यादा नज़दीक आती जा रही थी। त्रिशा उसके होठों को अपने होठों से छूने ही वाली थी कि तभी वेदांश हड़बड़ा गया। दरवाजे पर खड़ी अंबिका के वहां से चले जाने पर वेदांश ने त्रिशा को जोर से खुद से दूर धकेल दिया। त्रिशा संभाल नहीं पाई और नीचे फर्श पर गिर गई। वो वेदांश की इस हरकत से थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर भी उसकी मुस्कान गायब नहीं हुई। क्या कर रही हो त्रिशा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ और तुम हो कि? वेदांश गुस्से से चिल्लाया। तृषा अब भी शांत दिख रही थी, जैसे कि वेदांश के धक्के का और उसके गुस्से में उस पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा हो। इसलिए उसने वेदांश की ओर एक चालाक मुस्कान के साथ देखा और बोली, क्या हुआ वेदांश, इतनी घबराहट क्यों? हमारे बीच पहले भी तो सब कुछ हो चुका है, ये कौन सा पहली बार हो रहा है? क्यों तुम इतना घबरा रहे हो? वेदांश के चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी साफ दिख रही थी। उसने एकदम सख्त लहजे में कहा, त्रिशा, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है वो बस एक वन नाइट स्टैंड था और कुछ नहीं, और अब मैं ऐसा कुछ चाहता भी नहीं हूँ, और मैं शादीशुदा हूँ ये बात भी नहीं भूल सकता, मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता हूँ। त्रिशा की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी और उसकी आंखों में एक अजीब से जलन दिखने लगी। त्रिशा ने भी गुस्से में ताना मारते हुए कहा, तुम्हारी पत्नी? क्या पत्नी? पत्नी लगा रखा है वेदांश, क्या तुम खुद से भी झूठ बोल रहे हो? तुम दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसे तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो। तुमने उससे जबरदस्ती शादी की थी, और वो शादी नहीं बस एक दिखावा था। मुझे सब कुछ पता है, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। वेदांश ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। मुझे जो भी करना हो वो मेरे और अंबिका के बीच की बात है, तुम इसमें बीच में मत पड़ो, और जो तुम कर रही हो वो बंद करो। मैं अब तुम्हारे साथ किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहता। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि मैं साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगा। त्रिशा की आंखों में अब गुस्सा भर चुका था। उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, तुम्हें पता है वेदांश, तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुमने मुझे यूं ही इस्तेमाल किया है, और अब जब मैं तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ तुम मुझे ऐसे दूर कर रहे हो। कौन सा तुम अपनी पत्नी से प्यार करते हो जो उसके लिए इतनी वफादारी निभा रहे हो? वेदांश की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। उसने सख्ती से कहा, तुम जो भी सोचती हो त्रिशा, वो सब तुम्हारी गलतफहमी है, और हमारी शादी चाहे जैसी भी हो, हमारा रिश्ता जैसा भी हो, लेकिन मैं तुमसे साफ साफ कह रहा हूँ, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता, तुम्हारी जैसी हताश के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। वेदांश का लगातार इतनी बार साफ साफ अस्वीकार सुनने के बाद त्रिशा की आंखों में अब नफरत दिखने लगी थी। त्रिशा ने गुस्से में स्टडी रूम के दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, तो ठीक है वेदांश, देखो तुमने क्या चुना है, अपनी बर्बादी। मैं यहाँ से जा तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें अपने इस फैसले की कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने अपनी ओर से दरवाजे को धक्का दिया और तेजी से बाहर निकल गई। वेदांश ने उसके पीछे देखा, लेकिन वो अब किसी भी तरह की बात या बहस करने के मूड में नहीं था। उसकी टेंशन अब भी सिर्फ अंबिका ही थी। वेदांश ने अपने माथे पर हाथ रखकर गहरी सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि त्रिशा अब गुस्से में क्या करेगी, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा डर उसे इस बात का था कि अब अंबिका ने उसे इस हालत में देख लिया था। त्रिशा के उसके कमरे से बाहर निकल जाने के बाद भी वेदांश ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा,
पता नहीं क्यों किया मैंने ये सब, क्यों बोला मैंने ये सब, लेकिन जाने अनजाने मैं त्रिशा को नाराज कर दिया है। पता नहीं क्या करेगी ये लड़की, और मैं अब क्या करूं? वेदांश ने खुद से पूछा। उसकी सोच गहरी होती जा रही थी। उसने फिलहाल अब तक तो कुछ भी गलत नहीं लगा था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अंबिका का भरोसा तोड़ दिया था, और वो ये जानता था कि अब उसे अपनी पत्नी को समझाने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। त्रिशा के वहां से चले जाने के बाद वेदांश कमरे में बिल्कुल अकेला बचा था, इसलिए वेदांश ने कुछ देर तक वहीं बैठे बैठे सोचने की कोशिश की। वो सोच रहा था कि अंबिका के पास जाए या उसे थोड़ी देर अकेला छोड़ दे, लेकिन जितना वो सोचता उतना ही उलझता चला गया। वेदांश ने अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर एकदम कसकर साइड की दीवार पर मारते हुए कहा, क्यों त्रिशा, क्यों, क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब करके? और अगर अंबिका को इस बारे में पता चल गया तो? नहीं नहीं, क्या पता चलेगा, इस जगह ऐसा कुछ है ही नहीं, तो मैं बेकार में सोचकर घबरा रहा हूँ। वेदांश ने किसी तरह खुद को समझाने की कोशिश की, और फिर वहाँ स्टडी रूम में ही उठकर एक कोने पर गया और उसने सामने लगी हुई अलमारी को एक तरफ से हटाया। पीछे अलमारी के रैक बने हुए थे, और उन सब में अलग अलग रंग, आकार और डिजाइन की कांच की बोतलें रखी थीं, और उसे देखकर सब समझ आ रहा था कि वो सब शराब है जो कि वेदांश ने घर में छिपा कर रखा हुआ था। वेदांश ने तुरंत ही एक विस्की की बोतल निकाली और ढक्कन ढूंढे बिना वो सीधे बोतल का ढक्कन खोलकर उसे ही मुंह लगाकर पीने लगा, और एक झटके में उसे आधी बोतल खाली कर दी। उसकी आंखें भी एकदम लाल हो चुकी थीं, बाल भी बिखर गए थे, और उसे गर्मी भी लग रही थी। तो उसने अपना कोट उतारकर वहीं फेंक दिया और एकदम एक झटके से दरवाज़ा खोलकर वो भी स्टडी रूम से बाहर निकल गया। अपने ऑफिस रूम से बाहर आने के बाद भी उसे वहां लिविंग एरिया में और सीढ़ियों पर कोई नज़र नहीं आया, तो वो सीधे अपने कमरे की तरफ ही बढ़ गया। उसे पता था कि अंबिका वहां पर ही होगी। वेदांश पर नशा अब धीरे धीरे चढ़ रहा था और अभी भी अपने हाथ में बोतल पकड़े हुए वो सीधे कमरे की तरफ ही बढ़ता जा रहा था। क्रमशः